अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है तोहफा। सुबह का समय था। दिल्ली की एक गली में वहां रहने वालों ने देखा कि एक स्त्री एक कोने में एक फटी पुरानी गुड़िया को चिपकाए बैठी है। कभी वो उसे दुलारती तो कभी थपकियां देकर सुलाती। आसपास खड़े लोगों की उपस्थिति से बेखबर बड़े मनोयोग से गुड़िया को चूमती। अपनी ही दुनिया में मस्त वो एक पगली थी। उसकी उम्र करीब 30 साल की होगी। उसके शरीर पर इतना मैल जमा था कि उसके रंग का अंदाजा नहीं लग रहा था। उसके रूखे बालों ने जटा का रूप धारण कर लिया था। उसके शरीर पर मैले कुचैले चीथड़े वस्त्र थे जिनमें से झांकते उसके अंग प्रत्यंग दृष्टिगोचर हो रहे थे। पर उसे अपनी नग्नता का आभास ही न था। उसका पूरा ध्यान अपनी गुड़िया पर केंद्रित था। कभी वो गुड़िया को चिपका कर हंस पड़ती तो कभी करुण स्वर में सिसकियां भरने लगती। पगली बच्चों के लिए एक तमाशा बन गई थी। कभी वे उसे छेड़ते कभी चिढ़ाते पर वो निर्विकार भाव से गुड़िया को सीने से लगाए मुस्कुराती रहती। एक दिन एक लड़का हिम्मत करके पगली के पास पहुंच गया। शायद वो उसकी गुड़िया छीनकर फेंकना चाहता था। हमेशा को हंसती चुप रहती पगली की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। उसने पत्थर उठाकर उस लड़के को मारा। लड़के के सिर से खून बहने लगा। वहां रहने वालों ने जब उसका आक्रामक रूप देखा तो सतर्क हो गए। बच्चों को बहुत गुस्सा आया। अब तक वो दूर दूर से उसे देख हंसते तथा तालियां बजाते थे पर अब वे उसे पत्थरों से मारने लगे। पगली के शरीर से खून बहता पर वो बच्चों को मारती नहीं बस उन्हें देखकर हंसती रहती। ऐसा लगता था उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे भी समझ गए कि पगली वैसे किसी को परेशान नहीं करेगी पर अगर किसी ने उसकी गुड़िया छीनी तो वो जरूर उन्हें पत्थरों से मारेगी। गुड़िया पगली की जान थी। जाड़े के दिन आ गए थे। पगली अपने फटे चीथड़े कपड़ों में कांपती रात को एक खंडहर में जाकर सो जाती पर सर्दी के कारण वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। सुबह लोग देखते कि पगली की आंखें लाल हैं। अब स्त्रियों को पगली पर तरस आने लगा था। एक दिन एक दयालु स्त्री चुपचाप एक कंबल उस पर डालाई। सुबह काफी देर तक पगली दिखाई नहीं पड़ी तो लोगों ने सोचा शायद सर्दी के कारण ठिठुर कर पगली मर ना गई हो। जिज्ञासावश कुछ लोग खंडहर में पहुंचे तो देखा पगली बड़े आराम से कंबल ओढ़कर सोई पड़ी है। वे समझ गए कि कंबल ओढ़ने के बाद पगली को अच्छी नींद आई है। वे मुस्कुराते हुए लौट पड़े। धीरे धीरे पगली उस गली के लोगों के लिए अजनबी नहीं रही। सभी उससे ऐसे जुड़ गए जैसे वो भी इस गली में रहने वालों में से एक हो। बच्चों के माता पिता ने उन्हें समझा दिया था कि शायद पगली के कोई बच्चा था जो मर गया होगा और इसी गम में वो पागल हो गई होगी। उस गुड़िया को अपना बच्चा समझकर वो प्यार से चिपकाए रहती है। बच्चे भी धीरे धीरे समझ गए थे और पगली को ज्यादा छेड़ते नहीं थे पर उनके लिए एक मन लगाने का तमाशा तो थी ही। पगली के चारों ओर मक्खियां भिन भिन आती थी। पास जाने पर बदबू से माथा भन्ना जाता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वो वर्षों से नहाई नहीं है। अक्सर वो अपना सिर खुजाती रहती थी। शायद उसके सिर में भी जुओं ने अपना अड्डा बना लिया था। एक रात एक बदमाश ने खंडहर में घुसकर उस पगली से बलात्कार करना चाहा। वैसे तो पगली घोर पागल थी पर अपने पास वो किसी पुरुष का फटकना पसंद नहीं करती थी। पगली जोर से चीखी फिर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उसने बदमाश के सिर पर दे मारा। वो आदमी घायल हो गया और भाग खड़ा हुआ। गली के लोगों ने जब पगली को अपनी अस्मत बचाते देखा तो उनके हृदय में उस पगली के प्रति ममता बढ़ गई। एक दिन पगली को शांत देखकर एक दयालु स्त्री डरते डरते उसके पास गई और उसे कपड़े पहनाने लगी। पहले तो पगली ने गुस्से से उसकी तरफ देखा फिर हंसने लगी। उस स्त्री ने ठीक से उसके सभी अंग ढक दिए थे ताकि पुरुषों के सामने उन्हें लज्जा ना आए। अब पगली को रोज खाना भी मिलने लगा था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। पगली गले के किसी भी बच्चे या वयस्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। कभी कभी वो गुमसुम हो जाती और उसकी आंखों से चौधारा आंसू गिरने लगते। वो सिसकियां लेने लगती। गली की बूढ़ी स्त्रियां कहती बेचारी पर कोई दारुण दुख पड़ा होगा जिसे वो पागलपन में भी भुला नहीं पाती। एक दिन गली में रहने वाली श्रीमती चावला के घर उनके डॉक्टर देवर एक जन्मा बच्चा लेकर आए और भर्राए स्वर में बोले भाभी तुम्हारी देवरानी इस बच्चे को जन्म देकर चल बसी। इस नन्ही सी जान को आप रख सको तो बड़ी कृपा होगी। मैं मनोचिकित्सक हूँ, अपने काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ। एक स्त्री ही बच्चे की ठीक से देखभाल कर सकती है। श्रीमती चावला बोली, रमेश भैया, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब एक और बच्चे को पालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। बच्चा पालना खिलवाड़ नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसे कैसे निभा पाऊंगी? डॉक्टर रमेश का मुंह लटक गया। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो उसकी स्वर्गवासी पत्नी की अमानत तथा निशानी थी। वो ये जानता था कि जिस कुशलता से एक स्त्री बच्चे की परवरिश कर सकती है, वैसा पुरुष नहीं कर सकता। फिर जन्मे बच्चे का काम कम नहीं होगा। आया के भरोसे वो बच्चे को सौंप नहीं सकता था। उसे डर था कि आया उसके बच्चे को अफीम चटाकर स्वयं मौज करेगी। पैसे की उसके पास कमी नहीं थी। अगर श्रीमती चावला उसे रख लेती तो वो एक अच्छी रकम उन्हें देने वाला था, पर श्रीमती चावला के इनकार करने पर वो बहुत मायूस हो गया। दूसरे दिन जब वो टहलने के लिए निकला तो उसकी दृष्टि पगली पर पड़ गई, जो गोद में फटी गुड़िया को लिए गुनगुना रही थी। डॉक्टर रमेश को लगा, न जाने इस स्त्री को कौन सा धक्का लगा है जिसके कारण ये पागल हो गई है। पागलपन में भी संतान के प्रति मोह जैसी भावना उसमें विद्यमान है। वो मनोचिकित्सक था। स्त्री को देखकर उसके अंतःकरण ने कहा, अमीरों का इलाज तो तू बहुत कर चुका है, अगर इस गरीब स्त्री को ठीक कर सका तो तेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। वो घर आया। उसने उस पागल स्त्री के बारे में अपनी भाभी श्रीमती चावला से पूरी जानकारी ले ली। ज्यादा कुछ श्रीमती चावला बता नहीं सकी, क्योंकि उन्हें स्वयं ही जानकारी नहीं थी। डॉक्टर रमेश ने श्रीमती चावला से कहा, भाभी, मैं इस पागल स्त्री का इलाज करना चाहता हूँ। अगर ये ठीक हो गई तो इसके घर का पता लगाकर इसे पहुंचा दूंगा। भाभी, मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मुझे संतोष मिला हो या ये लगा हो कि भगवान के दिए इस शरीर का मैंने सदुपयोग किया हो। आज मुझ पर दुख आन पड़ा है तो दूसरों के दुख का मुझे भान हुआ है। पता नहीं इस स्त्री ने कितना दुख सहा होगा, तभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी और पागल हो गई है। अगर मैं इस स्त्री को अच्छा करके इसके घर भेज सका तो समझूंगा कि मैंने एक छोटा सा अच्छा कार्य किया है। बच्चे को आप 10-12 दिन के लिए रख लीजिए, फिर मैं इंतजाम करके ले जाऊंगा। फिलहाल मैं इस स्त्री को ले जा रहा हूँ, वहाँ अपने नर्सिंग होम में इसे भर्ती कर दूंगा। श्रीमती चावला बोली, रमेश भैया, इस पगली को ले कैसे जाओगे? डॉक्टर रमेश मुस्कुराकर बोला, एक नर्स का इंतजाम करके इसे अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा। श्रीमती चावला बोली, अगर रास्ते में इसने कुछ उत्पात किया तो क्या करोगे? डॉक्टर रमेश ने कहा, भाभी, इतना खतरा तो ऐसे रोगियों के लिए लेना ही पड़ता है। एक होशियार नर्स का प्रबंध करके डॉक्टर ने उसे पगली स्त्री के पास भेजा। इस नर्स को देखते ही पगली ने अपनी गुड़िया को कस कर पकड़ लिया और फिर क्रोधपूर्ण नेत्रों से नर्स की तरफ देखा। नर्स ने 2-3 पुरानी गुड़िया निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। पगली को विश्वास हो गया कि इस स्त्री के पास तो स्वयं इतनी गुड़िया है, ये उसकी गुड़िया नहीं छीनेगी। नर्स ने उसे गुड़िया देनी चाही पर उसने नहीं ली। नर्स प्यार भरी दृष्टि से उसे निहार कर उसका हाथ पकड़कर गाड़ी तक ले आई। गाड़ी में खाने की तरह तरह की चीजें रखी थी। खाने के सामान को देखते ही पगली गाड़ी में घुस गई और सीट पर बैठकर मजे से खाने लगी। शायद वो बहुत भूखी थी। डॉक्टर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पगली ने एक बार चलती गाड़ी को अचरज से देखा, फिर वो खाने में मग्न हो गई। नर्स ने पानी में नींद की गोली डालकर उसे पीने को दिया। पानी पीने के बाद धीरे धीरे पगली की आंखें झपकने लगी और वो गहरी नींद में सो गई। पगली के उठने से पहले ही गाड़ी नर्सिंग होम पहुंच गई थी। उसको उठाकर उसे एक कमरे में पहुंचा दिया गया, फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया। इस बीच उसके बाल शैम्पू से धोकर उसे रगड़ रगड़ कर स्नान कराया गया। नहाने के बाद उसका गोरा रंग दमक उठा। उसे साफ कपड़े पहनाकर पलंग पर लिटा दिया गया। स्त्री किसी ऊंचे घराने की लगती थी। डॉक्टर रमेश को लगा, शायद ये स्त्री अपने बच्चे के गम में पागल हो गई है। उन्होंने एक परीक्षण करने की योजना बनाई। परीक्षण काफी खतरे का था। 2 नर्सों की देखरेख में वे उसे एक छोटा बच्चा देना चाहते थे। उस जीवित बच्चे को देखकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही उनका उद्देश्य था। अगर वो बच्चे को यत्न से रखने में सफल हो गई तो इलाज आसान हो जाएगा। समस्या ये थी कि अपना बच्चा खतरे में कौन डालेगा। कोई माँ रुपए लेकर भी शायद अपना बच्चा एक पगली को नहीं सौंपेगी। वो पागल भी किसी भी समय बच्चे का गला दबा सकती थी। बहुत सोच समझ कर अपने हृदय पर पत्थर रखकर डॉक्टर ने अपना बच्चा पगली की गोद में देने का निश्चय किया। वो जानते थे कि इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है, पर भगवान का नाम लेकर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अपना बच्चा पगली को देकर उसका परिणाम देखेंगे। दोनों नर्सों ने कहा, डॉक्टर साहब, जब आप इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं तो हम भी जी जान से बच्चे की हिफाजत करेंगे। हम हमेशा सतर्क रहकर पगली पर निगाह रखेंगे। डॉक्टर अपने बच्चे को ले आया। उसने दूर से बच्चे को दिखाया। पगली जिज्ञासापूर्ण नेत्रों से बच्चे को देखती रही, फिर उसकी आंखों में बच्चे को गोद में लेने की ललक दिखाई पड़ी। डॉक्टर ने धीरे धीरे उसकी गोद में बच्चा दे दिया। बच्चा रोने लगा। पगली बड़े यत्न से कंधे से लगाकर उसे थपकियां देने लगी। अब समस्या ये उठी कि अगर पगली ने बच्चा नहीं दिया तो बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाएगा। डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचा, फिर एक दूसरा बच्चा नर्स से मंगवाया। नर्स ने बोतल से दूसरे बच्चे को दूध पिलाना चाहा। जैसे ही उसने दूसरे बच्चे के मुंह में बोतल लगाई, पगली ने झपट कर बोतल उससे छीन ली और अपने बच्चे के मुंह में लगा दी। बच्चा दूध पीने लगा। उसे दूध पीता देख पगली मुस्कुराने लगी। इस प्रकार बच्चे के जितने भी कार्य थे नर्स के द्वारा दूसरे बच्चे को करते देख पगली अपने बच्चे के लिए भी करने लगी। पगली की दवा बराबर चलती रही। रात को पगली को नींद की दवा दे दी जाती, तभी नर्सें उसे बच्चे से अलग कर पाती और पगली को उठने से पहले बच्चा उसके पास लिटा दिया जाता। धीरे धीरे पगली की स्मरण शक्ति लौटने लगी। कभी कभी वो किसी बच्चे और पुरुष का नाम भी लेने लगी। जैसे जैसे पगली का स्वास्थ्य ठीक होता गया, वैसे वैसे उसकी आंखों से पागलपन की झलक भी कम होती गई। डॉक्टर को पूर्ण विश्वास हो गया कि उसका परीक्षण सफल होने वाला है। जब भी डॉक्टर आता तब पगली उसे बड़ी आत्मीयता से निहारती। धीरे धीरे डॉक्टर के प्रति उसका रुझान बढ़ने लगा। अब जब भी डॉक्टर उससे मजाक करते तो वो शर्म से गर्दन झुका लेती। जब डॉक्टर देर से आते तो उसकी आंखों में शिकायत का भाव दृष्टिगोचर होता। अब वो कंघी करके कपड़े साफ पहनने लगी। जिस बेसब्री से वो डॉक्टर की प्रतीक्षा करती, वो डॉक्टर की नजरों से छिपा नहीं रहता। जीवन के प्रति उसका मोह बढ़ता देख डॉक्टर को बहुत सुख मिलता। एक दिन डॉक्टर ने उसकी आंखों में कहीं भी पागलपन का चिन्ह न देखकर प्यार से उसका हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने शर्माते हुए उत्तर दिया, अलका। डॉक्टर ने फिर पूछा, तुम किस शहर में रहती थी? अलका ने उत्तर दिया, लखनऊ में। आंखों में अनुराग भरते डॉक्टर ने पूछा, अलका, क्या तुम मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाओगी? कहने से तुम्हारा दुख हल्का पड़ जाएगा। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम जो चाहोगी वही होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। भरी आंखों से अलका बोली, डॉक्टर साहब, अपने दुख भरी कहानी सुनाकर मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। डॉक्टर ने गंभीर होकर पूछा, अलका, क्या तुम मुझे अपना नहीं समझती? अलका ने भावावेश में डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब इस संसार में आपसे बढ़कर मेरा कोई शुभचिंतक नहीं है। मैं अपनी मर्मांतक कहानी आपको जरूर सुनाऊंगी। जैसा मैं कह चुकी हूं, मैं लखनऊ की रहने वाली हूं। मेरे पति वीरेंद्र एक सफल व्यवसायी थे। लक्ष्मी की हमारे ऊपर अपार कृपा थी। मेरा एक दो महीने का बच्चा भी था। पैसे के लालच में एक दिन डाकुओं ने हमारे घर पर हमला किया। देखते देखते उन्होंने मेरे पुत्र को मार डाला। मेरे पति ने तिजोरी की चाबी उन्हें दे दी, पर फिर भी उन्होंने मेरे ही सामने पति को गोली मार दी। वो वहीं ढेर हो गए। ये सदमा मैं बर्दाश्त न कर पाई। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। फिर मैं भाग खड़ी हुई। इसके बाद मैं कहाँ कहाँ गई मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर बोला, अलका, मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इस बच्चे को जन्म देकर वो मौत की गोद में सो गई है। पागलपन में भी बच्चे के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मैंने अपना बच्चा तुम्हारी गोद में डाल दिया। अब ये तुम्हारा है। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहूंगा। अलका ने उत्तर दिया, डॉक्टर साहब, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं। मैं अकिंचन आपके योग्य नहीं हूं। मैं आपको दे ही क्या सकती हूं। डॉक्टर रमेश ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी विवाह के लिए सहमति देने में ही मेरे एहसान उतर जाएंगे। अलका के गाल शर्म से लाल हो गए। डॉक्टर रमेश ने कहा, अलका, विवाह से पहले मैं अखबार में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखकर विज्ञापन दूंगा कि तुम जिंदा हो और मेरे संरक्षण में हो। अगर कोई नहीं आता तो हम दोनों विवाह कर लेंगे। अलका ने डबडबाई आंखों से कहा, डॉक्टर आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। आप वो कस्तूरी मृग हैं जो अपनी सुगंध वातावरण में तो बिखेरता ही है पर अपने संपर्क में आने वालों को भी सुगंधमय बना देता है। आपको अपनी महानता का भान भी नहीं है। भाग्यवान वो है जो आपके संपर्क में आते हैं। डॉक्टर बोला, अलका तुम मुझे कुछ ज्यादा ईमान दे रही हो, मैंने तो केवल कर्तव्य पालन किया है। डॉक्टर ने अखबारों में अलका के बारे में विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन देने के एक दिन बाद सुबह सुबह किसी ने डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर अलका से बोला, शायद दूध वाला आया है, तुम जरा दरवाजा खोल दो। अलका ने दरवाजा खोला। आगंतुक को देखते ही वो चीख मार कर उससे लिपट गई। रोते रोते उसकी सिसकियां बंध गईं। रोने की आवाज सुनकर डॉक्टर बाहर आए। उसने देखा अलका एक पुरुष से लिपटी सिसक रही है। डॉक्टर समझ गया कि वो आगंतुक और कोई नहीं अलका का पति है। वीरेंद्र कुमार की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। डॉक्टर को दूसरी बार धक्का लगा। अलका को पाकर वो पत्नी का दुख भूल चला था। उसने संयम से काम लिया। वीरेंद्र कुमार का हाथ थाम वो उसे सांत्वना देता अंदर ले आया। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि डाकू उन्हें मृत जानकर सभी कीमती सामान लेकर भाग गए। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया। होश आने पर उन्होंने अलका की बहुत खोज की पर कोई खबर न मिलने पर उन्होंने उसे मृत समझ लिया। जब समाचार पत्र से उन्हें ज्ञात हुआ कि अलका जीवित है और आपके पास सुरक्षित है तो वो भागे चले आए हैं। उन्होंने आत्मीयता से डॉक्टर के हाथ को दबाते हुए कहा, डॉक्टर साहब आपका ये उपकार मैं जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। आपने निस्वार्थ भाव से मेरी पत्नी का इलाज किया है। आपके जैसा देवता पुरुष बिरले ही मिलेगा। अलका को ठीक करने के लिए आपने अपने बेटे की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया था। डॉक्टर ने एक बार गमगीन नजरों से अलका की तरफ देखा, फिर आंखों में एक दृढ़ निश्चय की छाया तैर गई। वो हल्के से मुस्कुराकर बोला, कैसी बहन हो जो आज रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई को राखी बांधना ही भूल गई। डबडबाए नेत्रों से अलका ने साड़ी का आंचल फाड़कर डॉक्टर की कलाई पर बांध दिया। डॉक्टर हंसकर बोले, अलका अपना नेक नहीं लोगी। अलका भर्राए स्वर में बोली, डॉक्टर भैया बहुत नेक इस बहन को दे चुके हो, अब तो जीवन पर्यंत आपका प्यार ही चाहिए। डॉक्टर हंसा, एक करुण हंसी, और बोला, भाई खाली हाथ तुम्हें कैसे जाने देगा, अपना तोहफा ही लेकर तो जाना है तुम्हें। ये कहकर वो अंदर गया और सोते हुए अपने बच्चे को अलका की गोद में डालकर बोला, अलका बहन भाई का ये तोहफा स्वीकार करो। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। अलका से सकते हुए बोली, भैया इस कीमती तोहफे को तो मैं ना लूंगी। डॉक्टर ने भीगी आंखों से कहा, आज पहली बार भाई के घर से विदा हो रही हो, इसलिए तो ये कीमती तोहफा दे रहा हूँ। अश्रुपूरित नेत्रों से डॉक्टर को देखते हुए अलका ने श्रद्धा से उनके पैर छू लिए और भाव विवल होकर वीरेंद्र ने उन्हें गले लगा लिया।
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण।
ये थी arparadio.com की प्रस्तुति।